Yeah. गौरांगिताई 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 जय गौरांगिताई जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय शीला प्रभुपाद
श्लोकादिति ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीव्यासं ततोदयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमा श्लोके भक्तिरा भवति नैष्टिकी। आज हम श्रीमद् भागवतम के दसम स्कंद का अध्याय 12 इनका शीर्षक है अगासुर का वध श्लोक संख्या नंबर 42। कृपा करके मेरे पीछे दोहराइएगा। तत ब्रूहि मे महायोगिन परम कौतूहलम गुरो नूनम एतत् हरेह एव माया भवति न अन्यथा। तत् ब्रूहि मे महायोगिनी तत् ब्रूहि मे महायोगिनी परम कौतूहलम कौतूहलम गुरु परम कौतूहलम गुरु नूनम यत् नूनम यत् धरेर एव नूनम यत् धरेर एव माया भवति अन्यथा माया भवति अन्यथा। तत् ब्रूहि मे महान् योगिन् तत् ब्रूहि मे महान् योगिन् परं कौतूहलं कुरु परं कौतूहलं कुरु नूनं यत् धरेर एव नूनं यत् धरेर एव माया भवति अन्यथा माया भवति अन्यथा तत भूरी मे महायोगिन परम कौतूहलं गुरु नूनं यद्धरेरेव माया भवति अन्यथा श्लोक करने के पहले पिछले दो श्लोक का अनुवाद नहीं है तो खाली एक नजर देखेंगे। श्री शुक्त वाचा इत्थं विजय यथा देवता दत्त श्रुतवा स्वराथु चरितं विचित्रं पाप्रच भूय अपि तत एव पुण्यं वैयाशकिं जन निग्रहिता चेतसा। श्री राजोवाच ब्रह्मण कलांतर कृतम तत्कालीनां कथा भवे यत कौमारे करि हरि कृतम जागु पौखंडते पौखंडके अरभ का अनुवाद प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री शुक्त गोस्वामी ने कहा, हे विद्वान संतो, श्री कृष्ण की बाल्यकाल की लीलाएं अत्यंत अद्भुत है। महाराज परीक्षित अपनी माता के गर्भ में उन्हें बचाने वाले कृष्ण की उन लीलाओं के विषय में सुनकर स्थिरचित्त हो गए और उन्हें सुखदेव गोस्वामी से फिर कहा कि वे उन पुण्य लीलाओं को सुनाइए। महाराज परीक्षित ने पूछा, हे मुनि, भूतकाल में घटित इन घटनाओं को वर्तमान में घटित होते क्यों वर्णन किया गया है? भगवान कृष्ण ने अगासुर को मारने का कार्य तो अपनी कौमार अवस्था में संपन्न किया था, तो फिर बालकों ने उनकी पौखंड अवस्था में इस घटना को अभी घटित क्यों बतलाया? आज के इन श्लोकों का शब्दार्थ इस प्रकार है। तद ब्रूहि, अथा आप बतलाइए, मैं मुझको महायोगिन, हे महान योगी, परम अत्यंत कौतूहलम उत्सुकता, गुरु हे गुरु, नूनम अन्यथा एत यह घटना हरे भगवान की एवं निसंदेह माया माया भवती है, न अन्यथा और कुछ नहीं। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। हे महायोगी, मेरे आध्यात्मिक गुरु कृपा करके बतलाइए कि यह कैसे हुआ। मैं यह जानने के लिए परम उत्सुक हूँ। मैं सोचता हूँ कि यह कृष्ण की अन्य माया के अतिरिक्त और कुछ न था। तात्पर्य, कृष्ण की अनेक शक्ति है, पराश्रय शक्ति विविधैर सूयते, श्वेतावस्वतर उपनिषद में छठे 6.8 इसमें यह वर्णन किया गया है। अगासुर का वृत्तांत एक वर्ष के बाद प्रकट किया गया। इससे कृष्ण की कोई शक्ति निहित होगी, इसलिए महाराज परीक्षित इसके विषय में जानने के लिए परम उत्सुक थे और उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से इसे बतलाने के लिए प्रार्थना की। होम ज्ञान तिमिरंदम ज्ञानंद निश्चलाचुरुन्मीतम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदामि तथापि स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साद्वदूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पाधान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, त्रिशुभानुसुधे देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो वच, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। यहाँ पर परीक्षित महाराज श्रील सुखदेव गोस्वामी के समक्ष बैठकर भगवान हरि की कथा बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। तो ये दसम स्कंद तक यानी कि प्रथम अध्याय से, प्रथम स्कंद से दसम स्कंद तक आप पहुंचे हैं, तो लगभग हुआ होगा कुछ 5 या 6 दिन के आसपास। और निरंतर भगवान की हरि कथाओं में पूरी तरह तलीन है। ऐसे नहीं कि उन्हें कुछ झपकी आ गई या थकावट हुआ, जो एक संघर्ष साधक भक्तों के जीवन में होता है, तो वैसे किसी भी प्रकार का उनमें लक्षण नहीं दिखाई दे रहा था। जब सुखदेव गोस्वामी ने उनको इसी अध्याय के प्रथम, इसी स्कंद के प्रथम अध्याय में ही वर्णन आता है कि सुखदेव गोस्वामी ने उनको याचना की है कि हो सकता है कि आपको प्यास इत्यादि लगी होगी, तो आप अपने प्यास मिटा लीजिए। परीक्षित महाराज कहने लगे कि अच्युतम हरि कथामृतम, जो अच्युत का जो हरि कथा जो है, पीबतम तदमुखाम भोजम, ये अच्युत की कथा ही मेरे लिए केवल अपने प्यास को मिटाने का एक अमृत जल है। परीक्षित महाराज के जीवनी शैली में हम सीख सकते हैं कि देखिए, उन्होंने अपने जीवन में सारी शारीरिक आवश्यकताओं को परित्याग कर दिए और एक तक केवल भगवान की हरि कथाओं में लगे थे। जबकि उनको जब कहा गया कि आप अपने प्यास को बुझा लीजिए, तो परीक्षित महाराज का ये कहना था कि उसी शारीरिक अवस्था के प्यास को मिटाने के लिए जब मैं गया था तो मुझे श्राप मिल गया। तो अब परीक्षित महाराज कह रहे कि अब मुझे पुनः उस अवस्था को या उस शारीरिक अवस्था की पूर्ति नहीं करनी है, बस केवल मैं आपके दिए हुए जो कथाओं में मैं पूरी तरह अपने आप को रमा लिया हूं और इसी में मुझे आनंद आ रहा है। और यह परीक्षित महाराज की अवस्था थी कि निरंतर भगवान की हरि कथाओं में अपने आप को तलीन कर लिए और इतने दिन तक एक तक बैठ कर भी उन्होंने थोड़े भी अपने जीवन में, या उस समय उन्होंने ये भी नहीं कहा कि अब मैं थोड़ा ब्रेक लेना चाहता हूं, बल्कि अब यहां पर अब इन श्लोकों में अगर हम सुनेंगे तो बड़ा इस श्लोक से हमें दिखाई पड़ता है कि परीक्षित महाराज के हृदय में कितना आतुरपन था हरि कथा सुनने के लिए। वो कह रहे हैं कि तत ब्रूही में महान योगी, पहले तो सुखदेव गोस्वामी की स्तुति करते हुए वो वर्णन करते कि आप कितने महान हो, और परम कौतुलम गुरु, वो कह रहे कि मैं बहुत उत्सुक हूं कुछ जानने के लिए, कौतुक मेरे अंदर एक जिज्ञासा जग रही है, और वो भी सुखदेव गोस्वामी को कह रहे संबोधित करते हुए कि गुरु। यहां पर गुरु और शिष्य का एक संबंध दिखाई पड़ता है। गुरु तब तक शिष्य को उपदेश नहीं देते जब तक शिष्य के अंदर वो जिज्ञासा या वो कौतूलता नहीं दिखता, तब तक वो कुछ कहते नहीं है। यहाँ तक कि हम देखेंगे श्रीमद् भगवद गीता की भी शुरुआत होती तब है जब अर्जुन ने अपने अंदर उस जिज्ञासा को प्रकट किया। नहीं तो प्रथम अध्याय में अगर केवल देखेंगे जहां पर केवल अर्जुन ने अपना ही बखान करते गए, इसलिए प्रथम अध्याय जो कि अर्जुन की गीता हमें सुनाई पड़ती है, इसलिए अर्जुन ने प्रथम अध्याय में वो अपने पंडिताई पूर्वक अनेक प्रकार के तर्क को पेश किए, कोई कौतूलता नहीं थी उसके अंदर, और जबकि वो अपना ही व्यथा प्रकट कर रहे थे कि मेरे नजर से यह सही है, इसलिए उन्होंने कह दिया कि मैं युद्ध क्यों नहीं करना चाहता हूं। तो प्रथम अध्याय में उन्होंने 5 कारण व्यक्त कर दिए, क्योंकि ये सब मेरे अपने, तो करुणा को व्यक्त किया, फिर भोग का कारण व्यक्त किया, फिर उन्होंने कुल विनाश का कारण व्यक्त किया, ये सारे मारे जाने से समाज में स्त्रियों को संरक्षण करने वाला पुरुष नहीं होगा तो अवांछित संतान उत्पन्न होंगे और वो अवांछित संतान पिंडदान देना बंद कर देंगे, आपस में पशुओं की तरह झगड़ा करेंगे और पितरों का श्राप लगेगा, वो भी नरक जाएगा, मैं भी नरक जाएगा, और इस तरह महान पाप होगा। और इस तरह उन्होंने अपने 5 कारण को व्यक्त करके अर्जुन ने बहुत अच्छी तरह, अगर एक कोई साधारण कोई सज्जन व्यक्ति बाहर का कोई सुनेगा तो कहेगा वाह प्रथम अध्याय में अर्जुन ने सही बात कहा, उसमें कोई दोष ही नहीं था। लेकिन वास्तविकता भगवान ने वहां पर एक लफ्ज नहीं बोले, उसके कारण यह था कि अर्जुन ने अपने अंदर उस कौतूलता को प्रकट नहीं किया। जब दूसरे अध्याय में जब 7वें श्लोक में जहां पर अर्जुन ने अपने आप अपनी कमजोरी को व्यक्त करते हुए और उन्होंने ये कहा कि अब मुझे आप शिक्षा दीजिए, जब उन्होंने विनम्रता पूर्वक जब शरणागति को ग्रहण किया तब भगवान ने भगवद गीता का आरंभ किया दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से। यहां पर शिष्य का यह गुण दिखाई पड़ता है कि शिष्य जब भी गुरु के समक्ष जाते हैं तो अपने तौर तरीके नजरिया से देखना, जो विचार जो है उसे बंद कर देना चाहिए, उसे केवल गुरु के चक्षु को ग्रहण करने के लिए गुरु से श्रवण करना चाहिए। इसलिए प्रथम अध्याय का नाम है सैन्य निरीक्षण। सैन्य निरीक्षण का अर्थ यह है कि अर्जुन अपने दृष्टि से निरीक्षण कर रहे थे, और जब तक शिष्य के अंदर ये अहम दृष्टि निरीक्षण की भावना रहेगी तब तक गुरु के उपदेश उसे समझ में भी नहीं आएगी और अगर कहेंगे तो भी उसे पता नहीं लगेगा। इसलिए पहले उसे यह शिक्षा ग्रहण करना होगा, और वो है कि गुरु के चक्षु को ग्रहण करने के लिए उसे इस प्रकार गुरु के समक्ष कौतूलता प्रकट करनी चाहिए। इसलिए यहां पर परीक्षित महाराज के जीवनी में हम ये शिक्षा सीख सकते हैं कि कैसे गुरु के पास जाना चाहिए, और उन्होंने कौतूलता किनके समक्ष प्रकट की है, एक प्रामाणिक गुरु के समक्ष। इसलिए यहां पर परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के समक्ष इस प्रकार की जिज्ञासा व्यक्त कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नूनम यत धरेर एव माया भवती अन्यथा, क्योंकि यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ने जो भगवान के हरि कथाओं में जो अगासुर का जो वर्णन जो कर रहे थे, तो उस वर्णन करते करते अगासुर का वध करने के पश्चात जितने भी ग्वाल बाल थे उन लोगों का वर्णन किए कि कैसे ये सारे ग्वाल बाल एक वर्ष के बाद उसी कथा को दोहरा रहे हैं, और ऐसे दोहरा रहे थे कि अभी वर्तमान में यह घटना घटा। तो परीक्षित महाराज को ये संशय हुआ कि ऐसे क्यों, एक साल बीत गया फिर भी वो इस प्रकार वर्णन कर रहे जैसे कि वर्तमान में यह घटना घट गया। परीक्षित महाराज को इस बात की जिज्ञासा जाग गई और इसलिए उन्होंने इस हरि कथा को और आगे बढ़ाने के लिए, इस हरि कथा को और रमणीय बनाने के लिए उन्होंने इस प्रकार की जिज्ञासा व्यक्त की और कहे कि वो एक साल में हुआ क्या, उसके विषय में मुझे जरा बताइए। तो कैसे भगवान की हरि कथा श्रवण करनी चाहिए यह दूसरी शिक्षा में परीक्षित महाराज से मिलती है, एक शिष्य से यह शिक्षा मिलती है कि जब भी हम भगवान की हरि कथा श्रवण करें तो इतने ध्यान से सुनना चाहिए कि एक शब्द भी नहीं छूटना चाहिए। जैसे रामायण में जहां पर वर्णन आता है स्वयं प्रभु रामचंद्र जी भी चकित हो जाते हैं जब उनके भक्तगण जब उनके ही कथाओं को जब श्रवण करते तो रामचंद्र जी भी आश्चर्यजनक हो जाते। बताया जाता है कि रामायण की शुरुआत होती है लव कुश के द्वारा रामायण के गीत गाकर, और उस रामायण के प्रसंग को गाने के लिए लव कुश तो आ गए थे और भरत महाराज ने भारी संख्या में सभी को एकत्रित किए थे सभा में और कहा था कि सभी लोग आइएगा, और सारे सारे प्रजा के सारे हर सज्जन व्यक्ति उस स्थान पर आकर बैठ गए और प्रभु रामचंद्र जी भी अपने आसन में बैठकर श्रवण कर रहे थे। तो लव और कुश ने जब भगवान के गीत को जब रामायण की बोली जब शुरू की तो सब लोग इतने उस गीत में आवेश हो गए, प्रभु राम को ऐसे प्रतीत हुआ सारे प्रजा लोग मुझसे ज्यादा आनंद ले रहे हैं, शायद हो सकता है कि मैं ऊंचे आसन में बैठा हूं इसलिए आनंद नहीं मिल रहा है। तो प्रभु रामचंद्र जी अपने आसन को छोड़ के सीढ़ियों में बैठ गए और सुनने लगे ध्यान से। फिर भी उन्होंने देखा कि नहीं और भी ये सारे लोग और ध्यान से सुन रहे, तो उन्होंने सोचा कि और सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ेगा। ऐसे करते करते वो सीढ़ियों के नीचे उतर गए और सीधे प्रजाओं के बगल बैठ गए कि अब शायद आनंद आएगा, इनके जैसा आनंद मैं भी लूटूंगा, और ऐसे सोचकर उनके बगल में बैठ के श्रवण करने लगे और श्रवण बड़े ध्यान से कर रहे थे। फिर भी वहां पर प्रजा लोगों को ये भी नहीं पता कि बगल में प्रभु रामचंद्र जी बैठे हैं। और जब लव कुश जब कुछ हास्य बात कुछ कर देते थे कि हनुमान जी का कुछ विनोद पूर्वक कुछ लीला का वर्णन करते थे तो इतने सारे प्रजा लोग हंस पड़ते थे और जोर से हट्टास लगाते हुए एक फीड देते थे प्रभु राम को, वाह क्या बात है। तो रामचंद्र जी भी हैरान हो जाते थे, अरे ये क्या मुझे पिटाई मिल रहा है। तो वहां पर प्रजाओं को भी ये खबर नहीं होता था कि बगल में प्रभु राम है। तो ऐसे भगवान के हरि कथाओं में इतने रम जाते थे कि उन्हें पता ही नहीं लगता था कि अगल बगल कौन है। ऐसे भगवान के भक्तगण भगवान की हरि कथा में भगवान के सीधी संगति को प्राप्त करते हैं। इसलिए भगवान से श्रेष्ठ भगवान के लीलाओं को या भगवान की हरि कथाओं को सुनने में ज्यादा महत्व दिया गया है, ना कि उनकी निजी संगति को प्राप्त करके। उनके निजी संगति से ज्यादा महत्व उनकी हरि कथाओं में दिया गया है, इसलिए भगवान से श्रेष्ठ भगवान का नाम। जहां पे रामायण लीला में जहां पर वर्णन आता है कि जब सारे लोग राम नाम लिखकर जब पत्थर फेंक रहे थे तो सारे पत्थर तैर रहे थे, रामचंद्र जी बड़े आश्चर्य थे कि ये कैसे हो रहा है। तब रामचंद्र जी ने भी आधी रात को अपनी कुटिया से बाहर निकल के एक पत्थर लेकर जब फेंका तो डूब गया। तो अगल बगल रामचंद्र जी देखने लगे, हनुमान जी आ गए और कहने लगे प्रभु रामचंद्र जी चिंता मत करो कोई नहीं देखा मैं अकेला हूं। तो रामचंद्र जी कह रहे ये हनुमान ये हो क्या रहा है, मेरा नाम लिखकर जब फेंक रहे तो पत्थर तैर रहा है और जब मैं स्वयं फेंक रहा हूं तो डूब रहा है। तो तब हनुमान जी कहने लगे कि हे प्रभु राम, जिस व्यक्ति ने आपके नाम को अपने हृदय में अपने चित्त में धारण करके रखा है वो तो भव सागर को आराम से तैर कर निकल जाएगा, लेकिन जिस व्यक्ति को आपने फेंका है उसको डूबने से कौन बचाएगा, वो निश्चित डूबेगा। तो ऐसे भगवान से श्रेष्ठ भगवान के नामों के विषय में यहां पर महिमा वर्णन किया जाता है कि कैसे भगवान की हरि कथा कितने व्यक्ति को लाभदायक प्रदान करता है। ऐसे ही परीक्षित महाराज अपने आप को तलीन कर दिए थे। भगवद गीता में जहां पर वर्णन आता है अन्यस्व एवं जानाता श्रुत्या अन्य उपासते अपि चातिरंति एवं मृत्युम श्रुति परायण। परीक्षित महाराज यहां पर बैठे थे, सुखदेव गोस्वामी से उन्होंने दो प्रश्न पूछे शुरुआत में कि व्यक्ति का हर पल हर क्षण हर कदम में उनका कर्तव्य क्या होना चाहिए, दूसरा प्रश्न ये पूछे कि मृत्यु के समय पर उनका क्या कर्तव्य होना चाहिए। तो मृत्यु के उपाय को खोजते हुए यहां पर परीक्षित महाराज बैठे हैं और उसी का उपाय वो प्राप्त कर रहे हैं। भगवत गीता में भी इसी की पुष्टि होती है, इसी बात की, कहते हैं कि मृत्यु श्रुति परायणा, वो जो व्यक्ति भगवान की हरि कथा में अपने आप को रमाता है वो व्यक्ति मृत्युम श्रुति परायण, मृत्यु को भी लांग कर जा सकता है, ऐसी शक्ति उसे प्राप्त होती है केवल भगवान के नाम संकीर्तन में। इसलिए इस श्लोक में कहा गया है कि अन्यस्व एवं अजानाता श्रुत्वा अन्य उपासते, अन्य उपासते यानी कि अर्थात कोई एक मूर्ख व्यक्ति भी क्यों ना हो वो भी भगवान की हरि कथा अगर सुनता है तो भी वो अपने आप को इस भव सागर से लांग सकता है। यहाँ पर जो शब्द जो है अन्य, जो शब्द जो है वो महत्वपूर्ण है, यानी कि शिष्य अगर मूर्ख रहेगा तो चलेगा, लेकिन शिष्य अगर द्वंद विचार या कपटी के विचार की भावनाओं में रहेगा तब फिर उसके लिए प्रगति थोड़ी धीमी है। इसलिए हम देखते हैं भगवत गीता में अर्जुन को कृष्ण ने फटकारा कि तुम मूर्ख हो, फिर भी भगवान ने उनको उपदेश दिया, ये नहीं कहा अर्जुन कि तुम कपटी हो, ये शब्द नहीं कहा अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन के अंदर वैसे सरलता की भावना थी। तो ये जो अन्य जो शब्द जो है वो अन्य शब्द इस प्रकार उपयोग किया गया है कि कैसे व्यक्ति को उस सरलता की भावनाओं को स्वीकारते हुए, भले व्यक्ति मूर्ख भी क्यों ना हो, भले व्यक्ति के अंदर कोई तात्विक दार्शनिक या किसी बड़े बड़े सिद्धांत को भी नहीं जानता हो, तत्पर भी उसको कोई नुकसान नहीं है, केवल उसे करना क्या है कि एक प्रामाणिक भक्त के मुखारविंद से उसे सुनना है। तो वहां पर अन्यस्त्व एवं अजानात, वहां पर जो प्रथम जो वक्ता के साथ भी अन्य शब्द उपयोग किया गया है, वक्ता के साथ शब्द अन्य उपयोग इसलिए किया गया है क्योंकि ये जो अन्य शब्द जो है वो एक प्रामाणिक गुरु से सुनना जरूरी है ये कहा गया है और किसी से नहीं। जो अप्रामाणिक वक्ताकार है उनसे सुनने से व्यक्ति का चित्त और दूषित होता है। जैसे श्रीमद् भागवतम के सातवें स्कंद में अगर देखेंगे हिरण्यकशिपु ने तो बहुत अच्छी तरह प्रवचन दिए और उनके प्रवचन को कोई सुनेगा वहां पर तो ऐसे प्रतीत होगा कि यह भगवद गीता के सार ही चल रहा है, शरीर आत्मा का भेद के विषय में चर्चा चल रहा है। और कितने व्यवस्थित रूप से उन्होंने बताया हिरण्यकशिपु कि मृत्यु सब दैवी शक्ति के संचालन से चलता है, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं, हम सब ये शरीर नहीं हम आत्मा हैं। अब देखिए हिरण्यकशिपु शिक्षा दे और इतने भारी मात्रा में शिक्षा दिए लेकिन आज भी कोई हिरण्यकशिपु का रेफरेंस नहीं देते कि हिरण्यकशिपु ने ऐसा बोला था, हिरण्यकशिपु शिक्षाएं नहीं होती है। हाँ प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं वो कहते हैं क्योंकि दोनों के जीवन शैली में भेद था, एक व्यक्ति असुर था केवल बखान करता था लेकिन आचरण नहीं था और दूसरा व्यक्ति प्रहलाद महाराज जिन्होंने अपने जीवन में उसे उतारे थे, इसलिए प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं को स्वीकारते हिरण्यकशिपु के नहीं। और इसलिए हिरण्यकशिपु भले ही कितना अच्छा सिद्धांत भी क्यों ना बोले तत्पर भी उसे हम स्वीकारते नहीं। उसको तिरस्कृत करते हैं, जबकि वो एक प्रामाणिक हो, क्यों प्रामाणिक भी क्यों ना हो। इसलिए उनके विषय में रूप गोस्वामी कहते हैं उनकी स्थिति किस प्रकार है, उस प्रकार है जैसे कि सर्प ने दूध पीकर छोड़ दिया है, तो वो भले ही दूध अमृत है सेहत के लिए, लेकिन अब जब सर्प ने पी लिया है तो वही दूध हमारे लिए जहर के समान है। तो वैसा जो हरि कथा भले ही अमृत क्यों ना हो, लेकिन अमृत होने के बावजूद भी हमारे लिए वही अमृत जब एक विषय व्यक्तियों के मुखारबिंद से जब सुना जाता है तो हमारा चित्त भी दूषित होता है, क्योंकि भगवान के जो भक्त जो है वो जब भी जब भगवान की कथा करते तो भगवान के चरण कमल के तुलसी को स्पर्श करके निकलता है उनके शब्द, और वो शब्द कर्णों में प्रवेश करके चित्त को शुद्ध करता है। और ये श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद में चतुर कुमार पृथु महाराज को समझाते हैं। और वैसे जो सुधा कनालीला करके शब्द जो है वहां पर वर्णन किया गया, वो जो शब्द जो है उनकी तुलना की गई है भगवान की चरण धूलि, और वो चरण धूलि भगवान के भक्त के मुखारविंद से निकलती और भक्त के कर्ण में प्रवेश करके हृदय को अभिषेक करती है। इसलिए भक्त भगवान की प्रसन्नता के लिए जो बोलते हैं उससे हमारा चित्त शुद्ध होता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। जो भी भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य किया जाता है वो वस्तु से हमारा चित्त शुद्ध होता है। जब श्रील प्रभुपाद जब जू में जब प्रवचन दे रहे थे उस समय मंदिर का कार्य भी चल रहा था और ठोक ठोक करके आवाज भी आ रहा था, तो उनके सेवकों ने कहा, प्रभुपाद के शिष्य ने कहा कि प्रभुपाद हम उसे बंद करा दे। प्रभुपाद ने कहा नहीं, उसे चालू रहने दो, वो भी कीर्तन है और उससे भी चित्त का शुद्ध होता है, क्योंकि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए है। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए चाहे कुछ भी क्यों ना हो, यहां तक कि नास्तिक सिद्धांत भी भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर उपयोग किया जाता है तो वो भी शुद्धिकरण करता है। गोवर्धन की लीलाओं में भगवान कृष्ण ने कर्म मीमांसा सिद्धांत बताया, लेकिन भक्त लोग उसे बड़े रुचि से पढ़ते हैं क्योंकि भगवान कृष्ण के मुखारविंद से निकला है। और वैसे ही अगर देखेंगे रामायण लीला में जहां पर जब प्रभु रामचंद्र जी ने अपने पिता के वचनों को पालन करने के लिए जब निकल पड़े थे तो रास्ते में उन एक ऋषि से मुलाकात हो जाता है, और वह ऋषि जब उनके समक्ष खड़े होकर कहते कि आप राज धनान्य राज को छोड़कर जंगल में क्यों भटक रहे हो, वापस चले जाओ। बोले नहीं, मेरे पिता का वचन है उसे मुझे पूरा करना है, इसलिए मैं वनों में ही भटकूंगा। तो यहां पर ये ऋषि रामचंद्र जी को नास्तिक सिद्धांत बताते, ये सब बकवास है, कौन देखा दूसरा जन्म, यही सब कुछ है, यहां रहो खाओ पियो मस्त रहो। अब यहां पर ऋषि प्रभु राम की प्रसन्नता के लिए बता रहे कि आप जाओ, इस वनों के कष्ट को मत झेलो। अब वो ऋषि प्रभु राम को प्रसन्न करने के लिए ऐसे नास्तिक सिद्धांत बताते हैं, भक्त लोग स्वीकारते हैं। हाँ सही है, क्योंकि भले ही नास्तिक सिद्धांत क्यों ना, लेकिन कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होता है तो भी वो स्वीकार लेते हैं। जैसे भगवद गीता में भी भगवान ने दूसरे अध्याय के 26वें श्लोक में नास्तिक सिद्धांत शुरू किया, वहां के तीन चार श्लोक में भगवान ने केवल नास्तिक सिद्धांत बताया अर्जुन को कि कैसे तुम्हें युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य बनता है, कि अगर तुम ये सोचते हो कि ये तुम्हारा जो ये जो शरीर ये आत्मा का जन्म होता है तो ये मरण भी होता है, तो डरो मत, ये आत्मा फिर से जन्म भी लेगा। तो वहां पर आत्मा का मरण तो ही नहीं, लेकिन कृष्ण कहते हैं अर्जुन को अगर तुम सोचते हो आत्मा मरता है तो भी क्यों टेंशन लेते हो, तो भी चिंता की बात नहीं है। तो भगवान कृष्ण भी नास्तिक सिद्धांत बताते तो उसे भी स्वीकारा जाता है। तो भले ही व्यक्ति एक भक्त के मुख से किसी भी प्रकार के सिद्धांत को भी क्यों ना सुने, जो एक शुद्ध भक्त के मुखारविंद से, तो उसके केवल उसका चित्त शुद्धि होता है। तो वैसे साधक भक्त उसी शुद्ध भक्त के बोली को पुनः दोहराते हैं। यहां पर सुखदेव गोस्वामी अब परीक्षित महाराज को ये समझा रहे उस अजासुर की कथा में। तो परीक्षित महाराज इस प्रकार जिज्ञासा प्रकट करते हुए वो ये प्रश्न को पूछे कि वो एक साल के बीच में जो अंतर्गत जो हुआ है वो वर्तमान के रूप में कैसे ग्वाल बाल बता रहे, इसके विषय में उन्होंने जिज्ञासा व्यक्त की, जिसके जिज्ञासा को हम नेक्स्ट क्लास में सुनेंगे। हरे कृष्ण। क्योंकि मुझे थोड़ा कम समय था और कम टाइम में बताया श्लोक के विषय में, तो जो हुआ सो उतना में तैयारी किया। कोई प्रश्न किसी का? थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। श्लोक प्रभुपाद की।